आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के अध्याय 3 से, जिसका शीर्षक है कर्म योग और श्लोक संख्या है 9।
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं
कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय द्वारा
श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्कृत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण परमान विष्णु आराध्य, विष्णु पुराण 3:8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता पुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। कृपया दोहराइए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर्म बंधन की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में ये कर्म बंधन को समझना बहुत जरूरी है। सामान्यतया लोग क्या सोचते हैं, पहले बच्चे होते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको उसमें बड़ा आनंद आता है, ऐसा मन करता है हमेशा खेलते रहो, हमेशा पढ़ाई करना, अगर कह दिए हम पूरा जिंदगी खेलते रहे तो सक्सेस ऑफ लाइफ। फिर थोड़े बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो जवान में और उनका दायरा बढ़ जाता है एंजॉयमेंट का। अभी उनके पास नॉलेज आती है, कुछ नई नई चीजें, कंप्यूटर, इंटरनेट, पूरा संसार ऐसे बहुत सुखदायक लगता है। तो इनको लगता है जीवन कितना लाइफ कितना वंडरफुल है, और इसलिए अधिकतर उस समय में किसी को कहा जाए आप ये भगवद गीता पढ़ो तो उसको रहेगा क्या जरूरत है भगवद गीता पढ़ने का, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है क्या, ये तो उन लोगों के लिए है जो जीवन से निराश हो गए हैं, जो लोग जीवन में सच नहीं पाए उन लोगों के लिए है। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो जब मैंने संपर्क में आया तिलक लगाना शुरू किया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे को बहुत बना के पूछते तेरे को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, डिप्रेशन हो गया क्योंकि ये सब तिलक लगाना भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, क्योंकि लोग सोचते हैं जो लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन लोगों के लिए है मन धराने के लिए भगवत। लेकिन जो लोग अभी यंग है और जिनका में ताकत है और जिनकी बुद्धि काम करती है तो उनको तो कोई जरूरत नहीं, जो लोग हार गए हैं उनके लिए है भगवत ऐसा। इसलिए कहते हैं कि जब तो बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे, अगर सब हम लोग के जीवन में ऐसा रहेगा कि निराश है तब मन धराने के लिए कुछ है। तो ऐसे लाइफ बहुत ही लगता है इसमें बहुत रियल है, बड़ा आनंद है। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कभी कभी ऐसे लम्हे आ जाते हैं सबके सामने कि ऐसा है कि मैं जो सोच रहा हूँ एक्चुअली वो सही नहीं है, उसके ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जैसे कभी कभी शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में रहा हूँ 6 साल, रियलाइजेशन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम लोग पिलग्रिमेज के आते हैं तो कभी कभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए पिलग्रिमेज के लिए, वो भी अच्छी जगह है अच्छा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर्स होते हैं ऐसा नहीं कि वो सबके सब आध्यात्मिकता की तरफ झुकते हैं, ऐसा नहीं। हालांकि जैसे जब हम होते थे ट्रॉमा वार्ड तो आप हर सेकंड किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का सिर कटा हुआ है, एवरी मोमेंट यू विल सी। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ऐसा रहता है जैसे कि दिस इज समथिंग रूटीन और स्टिल दे ट्राई टू एंजॉय लाइफ, ऐसा जाता है। तो बहुत विरले हैं जिनको वो देख करके साक्षात्कार होता है, जैसे हम बुद्ध भगवान को देखें सिद्धार्थ, तो जब वो यंग थे तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी का शव यात्रा निकल रही है, उनको शायद हुआ कि उन्होंने पूछा सबके साथ ऐसा होता है, तो हाँ सबके साथ ऐसा होता है, तो सोचने लगे तो फिर मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो फिर लाइफ का फिर यूज क्या रहा, अगर सबका ऐसे ही मर जाना है तो फिर यूज क्या रहा। तो ऐसा विचार बहुत कम आता है क्योंकि ये स्पेशली आज के समय में जब एजुकेशन पूरा ये है ही नहीं, पूरा एजुकेशन इस तरह से है कि कीप ऑन एंजॉयिंग एंड यू कैन कीप ऑन जस्ट एंजॉयिंग। और जबकि थोड़ा भी बच्चों के अंदर ऐसा विचार भी आता है, एक्चुअली बच्चों में आता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्योंकि उनकी आदत होती है सबसे पूछने ये क्या है कितने बनाए क्यों बनाए हर चीज पूछने, कोई मर रहा होगा ये कौन कौन मरा हमको मरना होगा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और बड़े होते हैं तो वो लोग बेटी ये सब बात नहीं करते चुप रहते हैं क्या आप सुनो, क्योंकि उनके पास उसका उत्तर नहीं होता है, फिर सुनो वो भी चुप रहते हैं। इसे धीरे धीरे क्या होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और सो कॉल्ड रियलिटी को फेस करता है, अभी तुमका एंट्रेंस एग्जाम में पास होना है, तुम्हें अपने पैर पर खड़ा होना है, और वो सोचता है सभी लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो लगता है जो मेरे ये सब प्रश्न हैं ये सब मूर्खता के प्रश्न हैं, कोई नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो ये प्रश्न उसके मन से ले आते हैं और ऐसा होता है। तो लेकिन फिर भी कभी ना कभी भौतिक जगत का संरचना इस तरह से है कि अपने आप दुख निकल के आते हैं, क्योंकि संसार को क्या कहा गया है दावानल कहा गया है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, अपने आप लगती है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में आपको दुख के लिए ना तो प्रयास करना पड़ेगा ना तो कामना करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप टाइम टू टाइम आते रहेंगे। सत्य अच्छा चल रहा है आपकी प्लानिंग के अनुसार और आपने खूब अच्छी प्लानिंग की हुई है, अगले साल बैंक बैलेंस इतना होगा और 5 साल बाद मेरी लड़की की शादी हो जाएगी और उसके बाद मेरे लड़के का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसे आपकी पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटना घटती है, गांव जैसा प्लानिंग फेल हो जाती है, आप टूट जाते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्या किया मैंने, क्यों हुआ, मेरी प्लानिंग कैसे फेल, तो ऐसी बीमारी आती है जिसका कोई इलाज नहीं है। और फिर हम लोग ऐसा लगता है कि जो भी हमारे जीवन का दृष्टिकोण था कि लाइफ इज जस्ट मीन टू एंजॉय एंड आई विल बी एबल टू एंजॉय लाइक दैट, ऐसे ही मैं एंजॉय करते रहूंगा, अभी लगता है अभी तो वो सब रास्ते ऐसे खत्म हो गया, अचानक डार्कनेस अंधकार छाया था, सब तरफ सब अंधकार छाया था। इससे फिर हमको एहसास होता लगता है कि देयर मस्ट बी समथिंग बियॉन्ड दिस, कुछ होना चाहिए, तो लाइफ तो बिल्कुल हॉरिबल है फॉर एवरीवन। तो फिर हम लोग अगर पुण्यशाली हैं, कुछ पिछले जन्म में पुण्य किए हुए हैं, अच्छे काम किए हुए हैं, तो हम फिर ढूंढते हैं उसको, और अगर पुण्यशाली नहीं है तो पूरे नास्तिक बन जाते हैं, ऐसा भगवान अगर है भी तो बहुत बेकार आदमी है जिसने सब दुख बनाए हैं, ऐसा दृष्टिकोण आता है। तो यही बड़ी आश्चर्य की बात, यक्ष महाभारत में एक कहानी आती है, तो यक्ष एक पांडवों को प्यास लगी तो वो एक तालाब में पानी पीने आते हैं, तो उसका एक अधिष्ठाता होते हैं यक्ष, तो जो भी पानी पीने आते हैं उनको पूछते हैं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर आप पानी पी सकते, तो बाकी पांडव को ध्यान नहीं देते, पानी पीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है आप बोलिए क्या प्रश्न, तो वो पूछते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज तो देते हैं कि आनी आनी भूतान गच्छन्ति यम मंदिरे, कि हर क्षण हर व्यक्ति देख रहा है कि उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके दादाजी उसके पिताजी सब लोग यम के मंदिर में जा रहे हैं, सब लोग इस शरीर को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो सोचता है उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आश्चर्य अगर तो देख रहा है सब जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको लगता है उसके बाद तो हम जो ये शरीर को सुखों का स्रोत मानते हैं, ये शरीर हमारे सुख का कारण बन रहा है, अभी देखो मेरे पास कितनी शक्ति है, ये टंग है, मैं नई नई चीजें व्यंजन एंजॉय कर सकता हूँ, हैव मोर डिफरेंट वैरायटीज हैव मोर then you know what not, उसको भी अंत नहीं है, करेक्ट, so many tastes, so many varieties, अलग human being है इसमें और फिर और भी सब अलग अलग जाति में स्पीसीज में अलग अलग टेस्ट है, there is no end, so you can keep on, that is why the body really is wonderful, it is a source of pleasure, really so, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं दुख ही होने ये होता है, एक्चुअली ये दुख का कारण है शरीर, सोर्स ऑफ हिस्ट्री रिवॉल्यूशनरी, क्या कह रहे हैं दुखता कारण, हर व्यक्ति सोच रहा है कि ये शरीर सुख का कारण है और इसलिए वो शरीर को फुल यूटिलाइज करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को सब तरह से जितना हो सके जहां जहां मिले जैसे जैसे एंजॉयमेंट मिले जहां मिले जैसा मिले, स्पेशली आज के समय में मॉडर्नाइजेशन मतलब आंखों के लिए जितना प्रकार का एंजॉयमेंट मिल सके, कानों के लिए जितने प्रकार का मिल सके, कान के लिए जितने प्रकार का मिल सके, न्यूअर एंड न्यूअर वे टू टिटिलेट अवर सेंसेस, हमारे इंद्रियों को प्रतिक्षण कुछ ना कुछ नया 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 पालन करने के लिए हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र हमको वाहन करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये शरीर वास्तव में दुख का काम है, तो इस शरीर की वजह से चार महान कष्ट हम सबको मिलने वाले हैं, जन्म मिलने वाले क्या मिल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये चार कष्ट। तो हम लोग उसको हर रोज संलक्षण सुनते हैं, जन्म मृत्यु जरा तो सुन लिया, जान लिया, लेकिन उससे विचार करना है बार बार कि वास्तव में ये शरीर तो केवल दुखों का कारण, सुख है बहुत छोटा बहुत थोड़े समय, लेकिन बहुत अधिक इससे कष्ट मिलता है। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब जीवन में फ्रस्ट्रेशन होता है या शरीर बीमार होता है, तब उस समय रियलाइज होता है यार आई वाज वेरी मिजरेबल, लेकिन फिर भी हमको एक आशा होती है, होप अगेंस्ट होप। जैसे कहानी है, शायद आपने सुनी हो, एक आदमी एक बहुत गहरे जंगल में, गहन जंगल में गिर गया, एक जंगल में कहीं से उसको फेंका गया, और उस जंगल में बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं चारों तरफ, यानी बाहर नहीं निकल सकता है जंगल, और उसने जब अंदर देखा, अंदर तो बहुत बड़े सब जंगली जानवर है, सब बहुत भूखे हैं, सब उसके पीछे भागने लगे तो खाने के लिए, आप सोचिए क्या हालत होगी उसकी। तो बहुत डर गया और बहुत तेज से भागने लगा, और बहुत गहरा जंगल था, अंधकार था पूरा, और भागते 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 खाई में गिर गया, और जब खाई में गिर रहा था तो उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी उसके हाथ में गिर रहा था, उस टहनी से लटक गया, बच गया। वह नीचे देखा खाई में, तो नीचे एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ, तो ऐसे वो नीचे खाई में था, ऐसे मुंह खोले हुए, उसको देख रहा था कि अभी शिकार आने वाला है, और ऊपर जो है वो सब जंगली जानवर वो चारों तरफ ऐसे खड़े थे, अगर हमारा शिकार निकल गया। और इस बीच में क्या हुआ, जब वो पेड़ पे लटक रहा था तो उसका हाथ एक मधुमक्खी के छत्ते पर लग गया जो उस पेड़ पर था, तो आप जानते हैं क्या होगा, सब मधुमक्खियां बहुत गुस्से में उसके ऊपर थोड़ा अटैक कर दी, लेकिन अभी उसका एक हाथ से पकड़ा हुआ है, अगर वो छोड़ देगा तो नीचे मगरमच्छ है, ठीक है, और साथ है उसको सब मधुमक्खी, और एक हाथ तो है वहां, क्या करेगा, और ऊपर भी वो सब गुजार रहे हैं। और फिर उसने देखा कि दो चूहे हैं, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का है, जो जो टहनी से लटका हुआ है उसी टहनी को वो काट रहे हैं, एक बार सफेद चूहा काटता है और जब वो थक जाता है तो काला चूहा काटता है, जब वो थक जाता है फिर सफेद चूहा काटता है, ऐसे एक एक करके दोनों काटते हैं, तो धीरे धीरे उसकी टहनी कमजोर होती जा रही है और निश्चित है कि वो अंत में नीचे गिरने वाला है। तो इस प्रकार की उसकी परिस्थिति है, ऊपर जंगली जानवर, नीचे घड़ियाल, मधुमक्खियां और इधर ये चूहे, लेकिन उस सब के बीच में वो जो शहद वो जो छत्ता था मधुमक्खियों का, उसका जो हाथ लगा तो वो छत्ते में से मध शहद एक एक बूंद उसके मुंह में आके गिरती है, और वो नेक्स्ट बूंद के लिए इंतजार करने लगता है अभी अगली बूंद, और इस इंतजार में जैसे मानो इतना सारा जो दुख है वो सब जैसे भूल जाता है। अब आप कंपेयर कीजिए हमारी स्थिति, तो दो चूहे जो हैं वो दिन और रात की तरह है, सफेद और रात, तो जैसे जैसे दिन और रात बीत रहा है हमारी आयु कम होती जा रही है, हम मृत्यु की तरफ जाते जा रहे हैं, जो घड़ियाल निश्चित रूप से हम मृत्यु की तरफ चल रहे हैं, और इसके बीच में ये मधुमक्खी जो काट रही है ये हर दिन आने वाली टेंशन है, एंग्जाइटी, बीमारियां, ये सब इनसे हम हर क्षण घिरे हुए हैं। तो इन सब के बीच में भी जो एक हमारी ये आशा है, अभी मैं इतने दुख में हूँ लेकिन इतना जो सपना है जब वो पूरा होगा तब तो मैं कितना आनंद मानूंगा, तो सब ऐसे एक सपना लगा करके उस सपने के भरोसे जी रहे हैं, उस सपने के भरोसे जी रहे हैं। जैसे मैं याद रहेगा हम एंट्रेंस एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बहुत हेक्टिक स्टडी होता है, और हेक्टिक स्टडी से ज्यादा टेंशन होता है, नहीं पास हुए तो क्या होगा, सबकी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होगा। लेकिन ऐसे बहुत सबसे ज्यादा तो किताब बन करके मुझे ड्रीम है, ऐसे कहानी भी है। एक आदमी बहुत गरीब था, तो उसके पास एक मटके में थोड़ा सा, हाँ मटका बनाया उसने, कुम्हार एक मटका, और ऐसे ड्रीम करने लगा मेरे पास एक मटका है, मैं इसको बेचूंगा पैसा आएगा और मटके बनाऊंगा तो मेरे पास दो हो जाएंगे, फिर चार हो जाएंगे, फिर मैं चार बेचूंगा और पैसा आएगा, फिर और पैसा आएगा, फिर उसके बाद मैं शादी करूंगा, फिर पत्नी आएगी, और फिर मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, और फिर बच्चे होंगे, और फिर ये बच्चे कई बार ऐसे आपस में झगड़ करके ऐसे परेशान कर रहे होंगे, तो फिर मैं उनको मारूंगा काटूंगा, और ऐसे करके उसका पैर जो है वो मटके में लग जाता है, और जो एक मटका था वो टूट जाता है। तो ऐसे हम लोग भी ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, फ्यूचर का एक दिन के आधार पर वर्तमान के कष्ट मानो भूल जाते हैं। एक तो ये स्थिति हमारी, तो और इस सब के बीच में कष्ट आते रहते हैं, और जब हम ऐसी कष्टों की परिस्थिति में होते हैं तब कुछ समय के लिए हमको रियलाइज होता है कि यस लाइफ इज मिजरेबल, लेकिन फिर अगले क्षण उसको भूल जाते हैं। उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब शमशान में को जाते हैं तो सब फिलोसफर बन जाते हैं, करेक्ट, सब फिलोसफर हो जाते हैं, सब जीवन में कुछ नहीं रखा है, बस भगवान का नाम ही एक है, ऐसा बेकार है, सच क्या है। लेकिन अभी तो शमशान यहाँ पे खत्म नहीं हुई, नहा धोकर के बाहर निकले, अच्छा तो बिजनेस में क्या चल रहा है अभी, क्या शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है अभी, आई का शुरू करते। तो ये इतना इंटेंस है, ये संसार का जो चक्कर है वो So real, जो चल रहा है, you just keep on going like that. इस समय में हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कैसे एक एक करके हमारा समय खत्म हो रहा है, और एक दिन अचानक हमारे सम्मुख मृत्यु आकर खड़ी हो जाएगी, तब केवल निराशा के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। So we don't realize that. तो ये बड़ा आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। तो कर्म बंधन क्या है, ये जो शरीर है ये महान कष्ट का कारण है। यदि हम ऐसा कार्य करेंगे इस मनुष्य जीवन में जिससे कि हमको बार बार ऐसा कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं जानिया सुनिया विष खाई, जान बूझ करके विष खाने जाता है। ऑलरेडी एक बार विष खाए हुए हैं जिससे कि ये शरीर मिला है, ऑलरेडी इसको भूले हैं, इतनी परेशानी में है, फिर और नए शरीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नए शरीर का भागवतम में इसको कहा गया है असन्नति क्लेशद आश देहा। कितनी मूर्खता की बात है कि ऑलरेडी एक शरीर बीमारी का लक्षण जो है वो हमको मिल गया है, उसको सफर कर रहे हैं हम लोग, और फिर भी नई बीमारी की जड़ को बनाने में बिल्कुल हिचक नहीं रहे, ऐसा काम किए जा रहे हैं जिससे कि नया नया शरीर मिल रहा है। गोपाल जी बोलते थे कि आजकल की सिविलाइजेशन कैसी अंधकार में है, आप कार में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे कि कितना अच्छा है, लेकिन वो अच्छी कार में चलना या बड़े बंगले में रहना उससे क्या फायदा होगा यदि आप अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। ये बड़ी सोचने की बात है, एक सेकंड में हम यहाँ से जा सकते हैं, और यदि हम ऐसे काम किए हैं, भगवान भक्ति नहीं किए हैं, समझे नहीं अपने को संसार को, यू कैन बिकम व्हाई नॉट, जो जानवर है वो भी तो प्राणी है, तो क्या गारंटी है कि कोई वो नहीं बनेगा, क्या गारंटी है। अरे किसने देखा, दैट इज नॉट द आंसर, किसने देखा, जब होगा तो ना आपको बोलेंगे मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा होगा, तो आपको कुछ उसका रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, जब होगा तो होगा। तो फिर कितनी डेंजरस लाइफ हम जी रहे हैं कि हमें अगले क्षण का नहीं पता कि हम कितने बिल्ली बन सकते हैं, तो फिर क्या फायदा है कार में जाने का या बंगले में रहने का, या ये प्रगति क्या प्रगति है अगर हम जानते भी नहीं कि अगले क्षण हमारा क्या होने वाला। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वेरी रिस्की सिविलाइजेशन, बहुत रिस्की है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है समझने के लिए कि हमारा अगला जीवन क्या होने वाला है, इज नो प्रिपरेशन, नो प्लानिंग। सब लोग आजकल प्लानिंग तो कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज हमको सिखाते हैं, अब प्लान, मैंने खुद से देखा था इधर IIM में, 20 ईयर्स अहेड 20 साल का प्लानिंग कर रहे हैं क्या होगा। लेकिन हम में से कोई सामान्य लोग अपने इस देह के बाप के देह का कोई प्लानिंग कर रहा है? पेंशन मिलेगा, मेरा रिटायरमेंट होगा, इतना होगा, इतना होगा, बहुत सब प्लानिंग कर, एफडी होगा, ये इतने साल लगेगा, फिर मेरे बच्चों की शादी सुना होगी, कितना डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जस्ट अप टू द टाइम ऑफ बॉडी जब तक है, उसके बाद का जीरो प्लानिंग, तब तक का बहुत प्लानिंग है, लेकिन उसके बाद का जीरो है, कोई प्लानिंग नहीं। जस्ट इसलिए कौन जानता है, ये आंसर क्या है, कौन जानता है, कौन जानता है, आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो सच्चाई वो तो रहने वाली है, वो सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, आप नहीं जानते हैं कि जानते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो आप नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास तो कीजिए, आर यू ट्राइंग एटलीस्ट, जानते नहीं तो जानने का प्रयास तो कीजिए, पूछिए तो प्रश्न, देखिए तो कि कोई जानता है कि नहीं जानता। तो ऐसा समय इस समय चल रहा है, विशेष रूप से वर्तमान समय में, बचपन से हमारे स्कूल में अंधकार सिखाया जा रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब भगवत गीता भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब केमिकल से आया है, सब बमवार हुआ है, सब अपने आप आ गया है, हम बंदरों से आ गए, और अभी लाइफ इज सिंपली ईट ड्रिंक एंड मैरी, ओनली एम इज हाउ टू अर्न मोर मनी, बी ए सक्सेस इन योर लाइफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, अर्न मोर मनी। तो ये बहुत रिस्की लाइफ है ऐसा जीना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं जीना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिर्णानाम धर्म हितेशाम अधिको विशेषो धर्म नहीं न पशुभिर्णानाम। केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए जो जीवन जीता है मनुष्य, वो पशु से तनिक भी श्रेष्ठ नहीं है। हम भी वही काम कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं, खा रहे हैं लेकिन थोड़ा पेपर प्लेट में खा रहे हैं, पेपर प्लेट में खा रहे हैं, वो डायरेक्ट जमीन में खाने से ज्यादा बेहतर, सो रहे हैं लेकिन ऐसी कंपार्टमेंट एक्चुअली एनालाइज करें तो ये प्रगति कोई प्रगति नहीं। तो प्रगति तो है ये प्रश्न पूछना, इनका उत्तर देना कि क्या होने वाला है मेरे साथ अगले मोमेंट, वेयर आई एम गोइंग टू गो, मैं कहां जाने जा रहा हूँ, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ, अपने को जानना। तो ये है कर्म बंधन। तो मनुष्य जीवन है कर्म बंधन से निकलने के, हम नहीं है उस कर्म बंधन में बने रहने के। तो कई बार हमको लगता है ठीक है, कई लोग बहुत बीमार हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव गॉट अ गुड जॉब, आई हैव गॉट गुड एजुकेशन, शुद्ध ऐश्वर्य, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छे घर में जन्म है, मेरे को तो किसी की कमी नहीं लगता। तो मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। एक तो ये जीवन अच्छा हमेशा नहीं रहेगा, you will have to also become old, you will also have to die. और दूसरा actually हमारा वास्तविक जीवन तो बहुत बड़े आनंद के जीवन के लिए है, उसके comparison में वर्तमान समय में जितना भी अच्छा जीवन हम कहें वो तुच्छ है, नगण्य है। जैसे कई बार मैं ये उदाहरण देता हूँ, हम लोग सब मूवी जाते हैं, तो और वहां पर हम देखते हैं स्टोरीज फैंटेसी, ओ दे आर वेरी हैप्पी, सम कपल वेरी हैप्पी, एंड देन द डांस, और हम लोग उसको डांस को देखते हैं, एंड वी आल्सो समवॉट डांस सीइंग देम, एक्चुअली वी ऑल वांट टू बी सो हैप्पी लाइक देम, दैट वी कैन आल्सो डांस लाइक देम, वी कैन आल्सो बी सो हैप्पी लाइक शी सॉ, इसे तो सब मूवी देखने आते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा लाइफ को इमेजिन करके बनाया था कि लाइफ इज देयर लाइफ वाज सो हैप्पी दे लिव लाइक दैट, सो वी वांट वी गो देयर बिकॉज़ एक्चुअली वी वांट दैट लाइफ, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है, ऐसा तो लाइफ किसी का नहीं होता है, सबका लाइफ तो आठ दस घंटे किसी बॉस के अंदर में काम करना, बिग बिग टेंशन, कला पति पत्नी आपस में झगड़ा, बच्चों का टेंशन, सो मेनी, तो रियलिटी तो ऐसा नहीं, केवल फिल्म में ऐसा देख सकते, रियलिटी में ऐसा नहीं। तो इसलिए मनोरंजन करने के लिए आते हैं, चलो फिल्म देख कर कुछ समय तो ऐसा महसूस करें, बट एक्चुअली ओरिजिनली वी आर मीट फॉर दैट लाइफ, सच लाइफ, सच हैप्पीनेस। तो हम चैतन्य महाप्रभु जो हमको, या श्री कृष्ण हमको ऐसे जीवन के लिए इनवाइट करने आते हैं। अगर सिंपल कोई न्यूट्रल तरीके से देखें, इफ यू आर गिवन ए चांस कि आपका ऐसा लाइफ है जहां पर देयर इज नो जॉब टेंशन, देयर इज नो फाइट, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, देयर इज नो सच ऑब्लिगेशंस, लाइफ इज सिंपली स्पोर्टिंग, केवल यू कैन जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग, वेरी गुड फैमिली, वेरी गुड रिलेशन, इटर्नली हमारे सभी वहां संबंधी, इटर्नली नित्य रूप से हमारे संबंधी रहेंगे। तो कौन आदमी होगा जो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहेगा, कौन नहीं। एंड जस्ट कंपेयर दैट लेवल टू अवर प्रेजेंट लेवल, दिन में और पूरे जीवन में कितने क्षण है जो हम इतना आनंद अनुभव करते हैं कि हमारे आंखों से अश्रु गिरते हैं, हम लोग कभी नहीं। टीवी में दिखाते हैं वो कोका कोला पीकर गई जंपिंग, ये और ड्रग बोला ठीक है कोका कोला, यू डिड जंप, यू सेड लाइक दैट जंपिंग, नहीं नो वन एवर सीन्स, लेकिन वो सब दिखाते हैं ऑलवेज, हम ब्रश कर रहे हैं देन वी आर फ्लाइंग, नथिंग हैपेंस एवरी डे मॉर्निंग वी आर सो क्लियर मैडनेस, सो क्लियर चीटिंग, हम लोग एंड देन हैप्पी फैमिली चीयरफुल सो नाइस, बट देन लोन पे करना है उसकी चिंता है, वो तो नहीं दिखाते है उसकी चिंता नहीं क्या होता है, उसके कंपेरिजन में हम सबकी लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा मिजरेबल है। अगर हमारी बेस्ट, इफ यू आर बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन दिस लाइफ पॉसिबल, इवन देन अगर हम अपनी ओरिजिनल लाइफ से कंपेयर करें अपने को, मिजरेबल है हमारा वास्तविक जीवन, तो हमेशा आनंद में नाचने गाने के लिए, उसके कंपैरिजन में हम सबका जीवन निराशा हुआ। तो ये है कर्म। तो हम क्यों ऐसा काम करें, हम क्यों जिससे कि हमको ऐसे ही बहुत ही जगत में रहना पड़े, हमारे लिए इस समय चांस है। मनुष्य जीवन में हम लोग तैयार हैं, मुक्ति के कगार पर हैं, ऐसे जीवन में एंट्रेंस करने के कगार पर हैं कि हम ऐसे जीवन में प्रवेश कर। तो यहाँ पर भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें वो सब गाइडेंस दे रहे हैं जिससे कि हम ऐसे जीवन प्रवेश कर। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसा कर्म करो इस भौतिक जगत में जब तक आप हो, जिससे आपको एक कर्म बंधन ना लगे। तो गोपाल जी इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें हमारे जो शरीर का निर्वाह है, परिवार का पालन पोषण है, उसकी सभी एक्टिविटीज को इस तरह से बनाया गया है कि एक पंच दो काज हो जाए, वो निर्वाह भी हो जाए और साथ साथ भगवान की भक्ति भी। इतना वंडरफुल हमारा कल्चर है कि परिवार का पालन पोषण तो करना ही है और समाज को चलाना ही है, ओके। पर समाज को चलाना है किस लिए, जिससे कि समाज के सब लोग इस कर्म बंधन से निकल सके। तो सबके नियत कर्म प्रस्ताव ड्यूटी, तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत चार वर्ण और चार आश्रम में समाज को बात करके सबको अलग अलग इस प्रकार के कर्म बनाए गए हैं जिससे सब लोग अपना सब काम अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सके। जैसे तो ध्यान देते थे सिंपल, ठीक है आपके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है, सो यू गेट रिच, तो आप एक घर बनाते हैं, अच्छा, लेकिन समझिए कि वो घर किसका है, वो घर भगवान की संपत्ति है। केवल मानने की बात नहीं, वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जो भी देने वाला है संपत्ति है वो हमारी बुद्धि भी उसकी द्वारा दी गई है, वो भी हमारी नहीं, हम सोचे हैं तो मेरी है, मेरे परिश्रम। लेकिन ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान है लेकिन थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और या कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ एंड नाउ यू कैनॉट स्पीक, यू कैनॉट, वन पार्ट गॉन और बोथ पार्ट गॉन, यू जस्ट नथिंग। तो क्या है हमारे हाथ में, क्या है, नथिंग, जस्ट नथिंग, वेरी स्मॉल। हमको बहुत घमंड होता है, मेरे पास इतनी शक्ति है, बहुत बड़ा हूँ, लेकिन वो जो भी कुछ दिया हुआ है वो किसी और का दिया हुआ है, हमारा नहीं। तो ये समझते हुए हमें समझना चाहिए कि जो भी कुछ है इसका सिंपली भगवान की संपत्ति है, इसलिए उसका उपयोग उन्हीं के लिए होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मेरे भाग्य के अनुसार मुझे धन संपत्ति मिली है तो आई मेक ए हाउस, लेकिन समझता हूँ कि ये घर भगवान की संपत्ति है और उसका उपयोग उनकी सेवा के लिए होना चाहिए। इसलिए घर में अर्च विग्रह है, उनकी सेवा हो, और विशेष घर का इस्तेमाल होना चाहिए सत्संग के लिए, ये उसका मेन था। ड्राइंग रूम में बनाते हैं, कितने फीट बाय कितने फीट, सो यू शुड सी सो दैट यू कैन हैव नाइस लेक्चर, मोर गैदरिंग, मोर पीपल कैन कम अटेंड दिस प्रोग्राम, दैट शुड बी आवर कैलकुलेशन। तो गृहस्थ आश्रम में एक महत्वपूर्ण काम है अतिथि सेवा, अतिथियों का। सो वी शुड हैव रेगुलर, ऐसे रेगुलर प्रोग्राम हो, सो गेस्ट आए एंड देन यू कैन सर्व देम प्रसादम। तो हमको उस बहाने मौका मिलेगा, जो भगवान कहते हैं, जो मेरे संदेश को फैलाता है, उनसे प्रिय मुझे कोई नहीं। तो ये घर का वास्तविक इस्तेमाल कि भगवान के अर्च विग्रह की सेवा हो और सब घर के सदस्य भगवान की भक्ति सेवा करें, हाँ, ऐसे बैठ करके सत्संग हो और फिर आसपास के सब लोगों को बुलाया जाए जितना हो सके, और ऐसे प्रोग्राम हो, सबको प्रसाद वितरण किया जाए, सब यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर कृष्ण। लेकिन इसकी जगह यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं, घर बना करके क्या कहते हैं, वॉल टू वॉल टीवी, होम थिएटर, होम थिएटर, सो यू कैन हैव होम थिएटर, देन यू कैन हैव सो मेनी मूवीज, यानी अपने इंद्रिय भोग के लिए सभी आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो काम दोनों में क्या अंतर होगा, जब आप अपने संपत्ति का या जो भी भगवान है उसका उपयोग जब आप अपने इंद्रिय और सुख के लिए करेंगे तो कर्म बंधन बनेगा, उससे एक शरीर का निर्माण होगा, क्योंकि जो भी हम अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहे हैं वो माइंड में इंप्रेस होता जाता है, हाँ, और समय आने पर उसका फल भुगतने के लिए हमें एक शरीर ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि फल भुगतने के लिए शरीर चाहिए, हाँ, तो इसलिए शरीर बनता है। तो इसलिए हमारे मन में न जाने कितने शरीर अभी ऑलरेडी बने हुए हैं, यस, प्रारब्ध कर्म। तो कोई भी हम काम करते हैं उसके फल बनते हैं जिनके अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो इस समय जो हम फल भुगत रहे हैं उनको प्रारब्ध कर्म फल कहते हैं, ऑलरेडी फ्रक्टिफाइड, हमने बीज लगाया उसका पेड़ बना और उसके फल बने और अभी फल चक रहे हैं, वो तो प्रारब्ध कर्म। उनमें से कुछ भाग अप्रारब्ध कर्म, सबसे पहले अप्रारब्ध, अभी जो फल नहीं बना है उसमें से फिर धीरे धीरे प्रारब्ध बनते रहते हैं, धीरे धीरे फलित होते रहते हैं। ये शरीर मिला, एक प्रकार के परिवार में जन्म मिला, उससे धीरे 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 कोई बीमारी आई, बड़ी बीमारी आई कोई, वो प्रारब्ध कर्म अभी फलित हुआ है, अभी फल मिला है, अभी और बहुत सारे बाकी हैं लाइन में। तो अचानक आएंगे तो हम देंगे कैसे आए, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो आपने अभी कुछ नहीं किया तो पहले जो किया था उसका क्या होगा, वो तो आप रिकॉर्ड भूल गए, लेकिन समबडी कीपिंग द रिकॉर्ड, और टाइम आने पर वो फलित होगा। तो ऐसे होता है, और फिर उनमें से कुछ कर्म फल बीज बन जाते हैं, कुटम और बीजम, यानी वही कर्म दोबारा करने की इच्छा। ऐसे बड़ा ही विशेष साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसको कर्म बंधन कहते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे एक के बाद शरीर धारण करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो मनुष्य जीवन है इस कर्म बंधन की साइकिल को वंस फॉर ऑल रोकने और वापस अपने नित्य जीवन भगवान के साथ आराम से बहुत शांति से रहने के लिए। इज अ वंडरफुल पर्सन, हम हमेशा चाहते हैं ना अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिले, सपनों का राजा या रानी, somebody, we are all looking for such wonderful person in our life, जिसको हम अपना सब कुछ निछावर कर सकते, but we are never able to find such person. कितने कुछ पसंद मिलती है, but then there are so many things which you don't like, mismatching. तो इसलिए हम कभी भी अपना पूरा दिल कभी किसी को नहीं दे पाते। लेकिन there is one such person, Krishna. He is so wonderful in every respect that we can completely give our heart to him. केवल एकमात्र हमारे प्रेम पात्र, तो हम सभी लोग इसी की तलाश में हैं। बट थ्रू भगवद गीता इज अ सिस्टमेटिक वे जैसे हम समझ सकें भगवान श्री कृष्ण को और धीरे धीरे ये कर्म बंधन से निकल करके अपने धाम वापस पहुंच सके। तो भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में आप तो जो भी कोई काम करो उसे यज्ञ की तरह करो, अर्थात उसका उस फलों को भगवान को समर्पित करो, क्योंकि भगवान ही उनके वास्तविक भोक्ता हैं, हम नहीं हैं। तो फिर प्रश्न उठेगा तो फिर हमारा क्या होगा, हम कैसे आनंदित होंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है कि हम जब आम है आम को खुद खाते हैं कोई तो हमको उसका एंजॉयमेंट होता है, हम किसी दूसरे को देंगे तो हमारे को कैसे उसका एंजॉयमेंट होगा, हमारे को क्या खिलाफ होगा, फील लाइक दैट। लेकिन एक्चुअली इक्वेशन बिल्कुल उल्टी है, इक्वेशन बिल्कुल उल्टी है। जब हम अपने लिए करते हैं तब हम बंधन में फंसते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उसको अर्पित करते हैं, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करते हैं, तब वास्तव में हम उसका एंजॉय करते हैं। क्या समझ सकते हैं, यथा तरोर मूल निशेचने न कृत्यन्ते स्कंद भुजो पशाय, जैसे खाना हम लोग पेट में डालते हैं, ये हाथ पैर सब मिलकर के खाना पेट में डालते हैं, और पेट में खाना डालने से क्या होता है, वो जो न्यूट्रिशन है वो स्वाभाविक सब हाथ पैर सब जगह अपने आप पहुंचे। लेकिन यदि हम वो खाना हाथ पैर सोचें, हम तो खुद एंजॉय करेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं एंजॉय करूंगा, तो वो इक्वेशन काम नहीं करेगी, वो फ्रस्ट्रेशन होगा। जब वो पेट को देंगे तब पेट संतुष्ट होगा तो अपने आप सब संतुष्ट होंगे, ये सिस्टम ऐसा बनाया है। तो उसी प्रकार से हमारा और भगवान का संबंध ऐसा है, जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट होंगे। जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे इसको, तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भक्ति प्रोसेस है एक्सपीरियंस, है सेल्फलेस सर्विस टू गॉड, जस्ट एक्सपीरियंस, जस्ट ट्राई। जब आप एक बार उसको चखेंगे देन यू रियलाइज ओह समथिंग डिफरेंट नेवर हैड इन माय लाइफ, सेल्फलेस सर्विस टू गॉड। अभी तक हम जो भी जी कुछ जीवन में कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सेल्फिश फॉर मी और मेरी एक्सटेंडेड, फॉर माय फैमिली, लार्जर स्केल, फॉर माय सोसाइटी। आज तक हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है सिंपली फॉर दैट सुप्रीम पर्सन फॉर गॉड, विदाउट एनी सेल्फिश, मेरे लिए कुछ नहीं, जस्ट फॉर मी। आप कभी जाइए और मंदिर साफ कीजिए, उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं, क्या मिलेगा उस मंदिर साफ करने, आपको तो कुछ नहीं मिलना, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बल्कि सब लोग देखेंगे आप इतने बड़े आदमी हैं मंदिर साफ कर रहे हैं, आपकी जो प्रेस्टीज है जो पॉलिसी जो है वो भी सब कटेगी। तो कभी आप ऐसा सेवा कीजिए विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में नहीं, सिंपली ऑन द ऑर्डर ऑफ शास्त्र दैट दिस इज कृष्णा टेम्पल, ये भगवान का घर है, और जैसे हम साफ अपने घर को रखना चाहते हैं तो भगवान तो परम शुद्ध हैं, उनका घर तो कितना साफ होना चाहिए, एक्चुअली आवर टेम्पल शुड बी लाइक दैट। प्रभुपाद यूज्ड टू से स्पॉटलेस क्लीन, स्पॉटलेस। तो ऐसे कभी हम जाएं और सफाई करें एंड देन यू सी योर हार्ट, यू एक्चुअली फील, जैसे मैंने बाहर सफाई किया तो मेरे हृदय का पूरा डिटर्जेंट से सफाई हो गया है, फर्स्ट बार जिस दिन सफाई हो गया, यू फील सो लाइट, क्योंकि सेल्फिशनेस से सोसाइटी में टच की रखना है, इसलिए वो पीछा से एक्चुअली इज अ बर्डन ऑन आवर हेड ऑन आवर हार्ट, सबको दिखाना है ये हमारी तस्वीर, इट्स ऑल बर्डन ऑन अस, आत्मा के लिए सब बर्डन है। लेकिन कभी हम जब सेल्फ सर्विस करेंगे देन वी विल फील सो लाइट सो नाइस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन किए रथ यात्रा से पहले, गुंडीचा मार्जन, तो वो तो भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आए हैं सिखाने के लिए कि ऐसे हमें होना चाहिए, भगवान को संतुष्टि करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट लॉस। तो खुद चैतन्य महाप्रभु मंदिर साफ करते हैं और बहुत सावधानी से साफ करते हैं, जितना सावधानी से साफ करें, जितना सावधानी से आप भगवान की सेवा करेंगे उतना ही आप फील करेंगे रेसिप्रोकेशन। सो यू शुड ऑल एक्सपीरियंस। इसलिए हमारा जो प्रोसेस है भक्ति का वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ही एक्सपीरियंस। यू चैंट हरे कृष्णा, डू सम सेल्फलेस सर्विस, गो इन टू शुड बुक्स, और उसमें क्या मिलने वाला है, नो कमीशन नथिंग, जस्ट भगवान के आदेश है इसका प्रचार करना है, इसलिए मैं इसका प्रचार करूँ, और फिर आप देखिए आकर यू विल सो। तो ये है यज्ञ, भगवान की संतुष्टि के लिए, इंद्रिय संतुष्टि के लिए काम करना। जब हम धीरे से चलेंगे फिर हम सोचेंगे मैं क्यों अपने लिए काम करूँ, ये तो सब बकवास है, मैं पूरा जीवन केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए होगा, ऑटोमेटिकली आए भी है नो नीड। तो ये सच्चाई है एवरीथिंग। ये बॉडी की मेंटेनेंस भी करनी है बट फॉर वॉट, क्योंकि भी है भगवान की संपत्ति, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए होना है, देयरफॉर आई नीड टू मेंटेन दिस बॉडी, ओनली मेंटेन नॉट अननेसेसरी सेंस एंजॉयमेंट। अगर हम उसमें लगेंगे तो फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जितना हम इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं तो इंद्रिय भोग जरूरी है, जितना जरूरी है मत अननेसेसरी, तो ग्रेजुअली यू हैव टू ग्रो, उस पर चलना है। जितना हम चलेंगे इससे रिलैक्स फ्री एंग्जाइटी फ्री, सबसे पहले इस्कॉन में आने के बाद और ये फॉलो करने के बाद पहला रिजल्ट जो हम अनुभव करते हैं, चिंताएं छू मंतर जाती हैं, हो जाती है, एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे जैसे हम समझते हैं कि मेरा जीवन इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, वास्तव में मैं भगवान का दास हूँ, जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान का सेवक बनना है, 50% से ज्यादा चिंता तो वो समझ करके ही खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फाइनली, और ये तो सबसे बड़ी समस्या है समाज के सामने, सब लोगों के सामने चिंताएं चिंता। तो ये सिंपल उपाय है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यू शुड लिव लाइक दिस प्रैक्टिस एंड देन एक्सपीरियंस दैट ब्लिसफुल लाइफ। तो केवल डिवोटीज हैं जो सुबह उठकर के 4 बजे डांस कर सकते हैं, और सुबह से लेकर रात तक डांस कर सकते, बाकी लोग जो सुबह उठते हैं तो इट कुड बी हेड एक्सटेंशन अगेन, पांच दिन होते हैं सर्चिंग कब आएगा संडे, आई स्टे माय फैमिली, और जब संडे आ गया शाम हो गया तो अगेन वो घर में रह रहे कभी कब आएगा डॉक्टर जाना है। एक्चुअली when we absorb ourselves in this, tabhi wo samay aata hai when morning to night we can be so relaxed, we can be so happy. Krishna is inviting us for that, isse liye main nimantran de raha, so please accept that invitation, you should accept that invitation, just try to in some way just chant, clean the temple, aapko usse kuch nuksan hai kuch khatra bhi hogi aapke agar yoga na ho, आप जिम में जा रहे हैं इतना सब कसरत कर रहे हैं तो डू सम एक्सरसाइज फॉर कृष्णा, तो कोई नुकसान नहीं केवल कुछ फायदे, तो लेट्स ट्राई गोपाल सूत्र है, लेट्स गिव इट अ ट्रायल, 1 month ट्रायल, चैंट हरे कृष्णा, डू सम सर्विस टू कृष्णा एंड सी योर व्हाट हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन?
Thank you.
आपके दोस्त बिगड़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं धोखा देता है, अभी
भी
आपकी सोसाइटी में कुछ लोग आए, समाचार के यहाँ कुछ किताबें हैं जो हमें भी आपको आप देंगे, तो आप उन किताबों को देख सकते हैं, यही नॉलेज को और फर्दर डिटेल में समझने के लिए, और वो भी श्री प्रभुपाद जी की भाषा में द्वारा, जैसे प्रकृति के नियम है, पीछे एक फोटो है बहुत स्ट्राइकिंग फोटो, देखिए आजकल के लोगों का जीवन, बहुत लोगों का जीवन में सामान्य हो गया है भारत में, शराब पीना मांसाहार करना, तो उसका क्या परिणाम होता है, आप क्या कहते हैं, वो सब नियम क्या है, एंड देन हरे कृष्णा चैलेंज, समाज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, देन डाइवोर्स, गोहत्या, शिक्षण, ये सब के ऊपर कर्म योग इज देयर, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कर्म योगम, पुनरागमन, पुनरागमन होगा, इसके लिए तैयारी करना है, कैसे होगा, क्या क्या शरीर मिलेगा, उसका ज्ञान बिगिनर्स गाइड प्रबोधनी, हाउ टू चैंट, सब बेसिक, घर में कैसे हार्डवेयर स्थापित करें, योग की पूर्णता, योग के विषय में बताया है, वर्तमान समय में योग की विधि क्या है, एंड जन्म और मृत्यु के परे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, व्हाट इज द लाइफ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के बाद शून्य नहीं है, तन बंधन से निकलने का मतलब नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, इट इज अ वेरी वंडरफुल लाइफ एग्जिस्टिंग वैकुंठ, अन्य ग्रहों की तरह जाता, प्रभुपाद ने सबसे पहले ये बुक लिखा अमेरिका जाने से पहले, फर्स्ट बुक ऑफ प्रभुपाद, अन्य ग्रहों की तरह जाता, क्योंकि उस समय आदमी चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहा था, प्रभुपाद रोज सरल यात्रा ये है अन्य ग्रहों पे जाने की, प्रभुपाद उसी समय बोलते कि लोग कभी नहीं जा पाएंगे, और फिर भगवद गीता और श्री कृष्ण बुक है, और एक ये सीडी है, सिक्स सेशन भगवद गीता हमने लिया था यूज के लिए, दिस सीडी इज ऑल्सो देयर, 30 रुपीज।